हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली
उत्तर सीरीज में आज अभी 49 नंबर प्रश्न के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये बाबा ने 19/12/1978 में चलाए हैं और प्रश्न है, स्थाई नशे में कौन रह सकते हैं? स्थाई नशे में रहने वाले की निशानी क्या है? स्थाई नशे में कौन रह सकते हैं? स्थाई नशे में रहने वाले की निशानी क्या है? बाबा ने उत्तर में बताया, स्थाई नशे में वही रह सकते हैं जो बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा का स्थान ही है बाप का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज का व एस्टेट का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा तख्त फिर नहीं मिलेगा। कैसा? परमात्म दिल तख्त। इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो लेकिन सदा तख्त नशीन। जो ऐसा तख्त नशीन बच्चे हैं वह पुराने देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, देखते हुए भी पुरानी देह और दुनिया को नहीं देखते हैं। तो ये थी 19/12/78 की बाबा के महावाक्य से का प्रश्न और उनका उत्तर। जो अव्यक्त है वो व्यक्त में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि बच्चों से प्यार है बच्चों को अव्यक्त बनाने के लिए। जो अव्यक्त है वो व्यक्त में आते हैं अव्यक्त बनाने के लिए। जो निराकार है वो साकार में आते हैं हम बच्चों को निराकार बनाने के लिए। जो अभोक्ता है, जो कुछ खाता नहीं है, वो हमारे सामने खाते हैं हमको अभोक्ता बनाने के लिए। जो अकर्ता है वो कर्म करने आते हैं हमको कर्म से न्यारा बनाने के लिए। वही अभोक्ता, वही अकर्ता, वही निराकार, जो प्रश्नों से पार है, जिनके मन में एक भी प्रश्न नहीं है, वही प्रश्न भी पूछता है और उसका जवाब भी देता है, क्योंकि हम बच्चों को प्रश्नों से पार ले जाने के लिए। हमारे ऊपर कितना मेहरबानी है, हमारे ऊपर कितना कृपा बरसाए, कितना हमें हमारे ऊपर पुरुषार्थ करे, कितना मेहनत करे, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। तो हमारा भी धर्म बनता है, हमारे भी कर्म बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है उनकी आज्ञा पर चलने के लिए, उनकी कहना मानने के लिए, उनकी जो दिल की आस है उनकी आस पूरा करने का। तो आज हम संकल्प करेंगे कि हम बाबा की आस अवश्य ही पूरा करेंगे। वैसे तो हमने कर लिया है, लेकिन इसको बार बार हमें रिपीट करना है, अपने मन में दोहराना है, अमृत बेला करना है, हर संकल्प हर समय हमें ध्यान रखना है इस बात का। तो इसमें हमने सुना स्थाई नशा, दिल तख्त, संगम युग, श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन, ये सब बातें इसके अंदर है। तो सबसे पहली बात बाबा ने बोला है स्थाई। स्थाई अर्थात क्या? जो परमानेंट है, जो सदैव है, जो लंबा समय तक चल सकता है, जो टिकाऊ है, जो अविनाशी है। विनाशी भी परमानेंट होते हैं दुनिया के हिसाब से। जो जल्दी घिसता नहीं, मिटता नहीं, टूटता नहीं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्थाई बोलेंगे। जो निरंतर है उनको स्थाई बोलेंगे। वैसे अस्थाई किसको बोलेंगे? जो कमजोर है, जो कभी भी धोखा दे सकते हैं, जो परमानेंट नहीं है, जो लंबा समय तक नहीं चल सकते, जो कभी कभी है, जो दिखावा ज्यादा है लेकिन अंदर में शक्ति उनके अंदर नहीं है, उनको हम अस्थाई बोलेंगे। स्थाई और अस्थाई के बारे में थोड़ा सा पॉइंट निकाला है। नशा स्थाई भी रहता है तो अस्थाई भी रहती है। जो परमात्मा पिता के द्वारा जो नशा मिलती है, जो खुमारी चढ़ता है, वो स्थाई रहता है। परमात्मा के याद और शक्ति के सिवाय जो भी नशा है वो अस्थाई है, वो टेम्प्रोरी है, वो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है, उसमें कोई ताकत नहीं है। प्राप्ति जो परमात्मा के द्वारा प्राप्ति होता है, जो परमात्मा हमें प्राप्त कराते हैं, वो प्राप्ति अस्थाई है। बाकी दुनिया के जो भी प्राप्ति है सब अस्थाई है, टेम्प्रोरी है, दिखावा मात्र है, क्षणभंगुर है। साथी अस्थाई और अस्थाई कहते ना, जीवन साथी जो शादी के बाद में जीवन साथी बनता है ना एक दूसरे का, वो भी सदा साथ नहीं रह सकते। छोड़ के नहीं भी जाए तो संग संग हमेशा नहीं रहेगा ना, कहाँ रहेगा हमेशा। लेकिन परमात्मा ऐसा जीवन साथी है, ऐसा साथी हो जो स्थायी रहता है, हमेशा रहता है, सदा रहता है, पूरा संगम युग रहते हैं। हम छोड़ देते हैं लेकिन वो हमें नहीं छोड़ता है। तो साथी भी हमारा स्थाई परमात्मा है। बाकी दुनिया के जो भी साथी है धोखा देने वाला है, अस्थाई है। वैराग भी दो प्रकार के होते हैं, स्थाई और अस्थाई। वैराग की बात याद आते मुझे एक राजा भर्तृहरि की याद आता। राजा भर्तृहरि को 3 सत्कम का विशेष गायन है, कौन कौन सा बताइए? सौंदर्य सत्कम, राज्य सत्कम और नीति सत्कम, और तीसरा है वैराग्य सत्कम। सौंदर्य सत्कम को देह पे इतना आकर्षित था कि उनकी पत्नी पे उनको बहुत ज्यादा मोह था, और पत्नी के मोह के कारण उन्होंने क्या क्या किया, वो फल दिया उसको, फिर उन्होंने दिया, उनका पत्नी का मोह था, अपना प्यार था उनके प्रधान सेनापति से, और प्रधान सेनापति का प्यार था किसी दासी से, किसी दासी का प्यार था नौकर से, नौकर का प्यार था किसी से, ऐसे करते 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 सबसे सबसे छोटा नौकर नौकर जो गेट पे रहता है उनको फल देता है, जो उन्होंने पत्नी को दिया रहता है, जो किसी योग सन्यासी ने देता है उनको, कि जो आपका बहुत प्रिय है उनको आप ये फल देना। उनका वो फल अपने उनके पत्नी ने प्रधान सेनापति को ऐसे करते करते लास्ट में उनके जो पहरा पे रहता है, मैं गेट पे रहता है, उनके पास जाता है और वो सोचता है मैं किसको दूं। उनको भी बोला जाता है कि तुम्हारा जो प्रिय व्यक्ति है उनको दो, तो वो अपने राजा को देता है। और राजा के जो आगे जो जो पट्टी रहता है हद का, जो चमड़ी को ही सुंदर मानते हैं, उनकी आंख की पट्टी हट जाती है और उन्हें दुनिया से बैराग आ जाता है। और उनके बैराग के बाद में जो उन्होंने लिखा है ग्रंथ, उन्हें कहा जाता है बैराग्य सत्कम। वो बैराग्य सत्कम पढ़ के बहुत सारे लोग अभी भी बहुत बड़े बैरागी बन जाते, बहुत बड़े योगी बन जाते, बहुत बड़े सन्यासी बन जाते हैं। और एक बंदर को भी बैराग आता है, कैसा, चने के लिए हाथ अंदर में घुसेरते हैं और जब हाथ नहीं निकलता है ऊपर से लोग पीटता है तो भागता रहता है, वो है मरकट बैराग। तो हम बच्चों का कौन सा बैराग है, बेहद का बैराग है या अस्थाई बैराग है, थाई बैराग है या अस्थाई बैराग है, हमें लानी है थाई बैराग, परमानेंट बैराग। व्यापार भी होता है थाई और अस्थाई, जो धड़ाधर महादेव मंदिर के बगल में होता है वो स्थाई बैराग है जब व्यापार है, और जो दुकान खोल के करते हैं, ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन करा के करते, वो उनको क्या बोलेंगे, थाई व्यापार बोलेंगे। योग भी थाई और अस्थाई है, दुनिया के जो भी योग है, पति किसी के साथ हम किसी को हम याद करते हैं वो भी योग कहा जाता है, वो क्या है तो अस्थाई बैराग है। लेकिन परमात्मा के साथ जो योग लगाते हैं वो हमारा थाई स्थाई हो जाता है। ज्ञान भी, दुनिया का ज्ञान अस्थाई है और परमात्म ज्ञान थाई स्थाई है। सुख भी, दुनिया के सुख क्या है, अस्थाई है, लेकिन परमात्म सुख स्थाई है। दुनिया में जो शांति मिलते हैं वो अस्थाई है, लेकिन परमात्मा के द्वारा जो शांति मिलती है, परमात्मा के द्वारा जो दुनिया में शांति के स्थापन होता है, स्थाई शांति हो जाती है। नौकरी भी दो प्रकार के होती, स्थाई और अस्थाई। लेकिन हमें बाबा ने नौकरी की टोकरी नहीं उठाया, सेवा के अर्थ भले हम करते हैं बात अलग है, लेकिन उसको बोझ समझ के नहीं, थाई करते हैं। दुनिया की प्योरिटी भी, जब चार धाम की यात्रा पे जाएगा व्यक्ति तो पवित्र रहेगा, कोई विशेष दिन पे पवित्र रहेगा, लेकिन परमात्मा ने हमें पूरा संगम युग के लिए पवित्रता का बंधन बांध दिया, थाई स्थाई पवित्रता में हम टिक गए हैं। प्रभु मिलन भी हमारा स्थाई है, दुनिया का जो भक्ति का मिलन है, दुनिया में जो भक्ति का भटकना है वो स्थाई है। परमात्मा से जो भी ज्ञान की प्राप्ति, जो भी शक्ति की प्राप्ति है वो हमें स्थाई रूप में मिलता है, लेकिन दुनिया के जो भी प्राप्ति है अस्थाई रूप में मिलती है। तो ये हो गई स्थाई और अस्थाई की डेफिनेशन। आगे हम चलते हैं नशा। नशा किसको कहेंगे हम, जो बार बार पीते हैं, जिनको लेने के बाद, जिनको सेवन के बाद, जिनको पीने के बाद व्यक्ति पहले से कुछ अलग फील करता है। लाइट भी फील करते तो भारी भी फील करते, शुद्ध बुद्ध खो देता है, खुशी होता है, गम को भुला देता है, चैन से सो सकता है, जहां भी हो रोड ही उनका घर बन जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, तो कि कुछ शब्दों में उन्हें नशा कहा जाता है। नशा मुख्य हमने तीन प्रकार के निकाले हैं, एक रूहानी नशा, एक बेहद की रूहानी नशा और एक जिस्मानी नशा। रूहानी नशा अर्थात क्या, जो स्वयं के लिए परमात्म शक्ति द्वारा स्वयं के उन्नति के लिए करते हैं, जो हद की भावना के रखकर परमात्मा शक्ति लेकर किसी खास व्यक्ति के लिए योग करते हैं, किसी स्थान के लिए करते हैं, जो स्वयं के लिए करते परमात्मा शक्ति से, ब्राह्मण बच्चे ही करते हैं लेकिन संकुचित विचार से, एक बार की घटना शायद आप सबको बहुतों को नहीं पता होगा, लेकिन कुछ हमारे जो पुराने भाई जी उनको तो पता होगा कि एक बहन बीमार थी और ग्लोबल में एडमिट थी, बहुत अच्छी थी, पक्की थी, उनके घर के सभी सदस्य ज्ञान में थे और बहुत अच्छे और पक्के थे, और उनको डॉक्टर्स मेडिसिन भी दे रहे थे, ट्रीटमेंट भी दे रहे थे, और उनके लिए विशेष योग भी कर रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ा। और हमारे न्यूयॉर्क के महीनी बहन आई, वो बहन से मिली, दृष्टि दिया और उनको बोला उठो बहन उठो, मैं आपसे मिलने आई हूं, और उन्होंने आंख खोला और बात किया, क्या हुआ होगा। उनकी जो माता पिता, उनके जो रिलेटिव्स जो योग करते थे, हद की भावना को रख के करते थे, छोटा विचार कि ये बच्चा का कल्याण हो जाए, मेरा बच्चा का कल्याण हो जाए, विशाल नहीं था, बेहद नहीं था उनके अंदर, अटैचमेंट लगाव था उनके अंदर, इसलिए उनका सकाश, उनकी शक्ति उन बच्ची तक, बहन तक नहीं पहुंच रहा था। लेकिन हमारे मोहिनी दीदी विशाल दिल लेके, बेहद में जाके, हद की दायरे को पार करके बाबा से शक्ति लेके उन आत्मा को शक्ति दिया और उन आत्मा तक वो शक्ति पहुंचा। तो जो इन भावनाओं से अगर हम जो पुरुषार्थ करते हैं, सेवा करते हैं, योग करते हैं, योगदान देते हैं, तो फलीभूत नहीं होता है, उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलता है। ये भी एक प्रकार की रूहानी नशा ही है, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन प्राप्ति बहुत कम निकलता है, प्राप्ति बहुत नहीं होता है। कई बार कंप्लेंट्स रहता है बाबा के बच्चों को कि हम इतना योग करते, इतना पुरुषार्थ करते, जब से हम ज्ञान में आए तब से हमारे घर में झंझट बढ़ ही गया, बोलते ओम शांति क्या, वो तो क्रांति फायदा हो गया घर में। आखिर क्यों होता है ये? अगर हम झांक के देखें तो कहीं ना कहीं हमारी ही गलती होती है, उन्हें हमें सुधारने की जरूरत है। दूसरी है बेहद की रूहानी नशा। बेहद की रूहानी नशा अर्थात वसुधैव कुटुंबकम, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, सारे विश्व अपना परिवार है, सब अपना है, कोई पराया नहीं है, सबकी सुख, सबकी शांति, सबकी प्राप्ति, सबको एक जैसे मिले, जो स्वयं के कल्याण के सिवाय सभी के कल्याण का सोचता हो। बेहद की भावना उन्हें परमात्मा शक्ति द्वारा जो प्यूरिटी का नशा रहता है, उस नशे से दूसरों को भी अंदर प्यूरिटी की शक्ति की जागृति कर सकता है। वो सदा एक के लगन में मगन रहेगा और एक के लगन में मगन होने के कारण से दूसरों को भी दूसरी की लगन से मगन के छोड़ा करके एक के लगन में मगन कर सकता है। इनका और भी बहुत ज्यादा विस्तार हो सकता है, लेकिन अभी हम जिस्मानी नशा के बारे में देखेंगे, तो शायद सभी अच्छी तरह बता सकते। जिस्मानी नशा अर्थात जो देह से संबंधित नशा है, क्षणिक है, जो पद का नशा है, जो पोजीशन का नशा है, मैन पावर का नशा है, देख लेना तुम मेरे को अभी ऐसे समझते ना, तुम आ जाना उधर, मैं बताता हूं मेरे पास कितने लोग हैं, बता दूंगा उसी समय। अभी अपने को बहुत ज्यादा समझता है। अपनी विशेषताओं का नशा, विशेषता प्रभु देन है। कभी मोहम्मद रफी से पूछा था कि आपकी जीवा पर तो सरस्वती की वास है, तो मोहम्मद रफी ने कहा था ये प्रभु देन है, जो हमारे स्वर दूसरों को अच्छा लगता है, जबकि उन्हें ज्ञान नहीं है, उनको परमात्मा का पता नहीं, उनके खुदा का पता नहीं है, तो भी ये कहता है। लेकिन हम बाबा के बच्चे, अगर कोई विशेषता है, कोई गुण है, उस विशेषता के कारण अगर कुछ परमात्मा के कार्य में मदद मिल जाती है तो क्या सोचते हैं कि मेरे वजह से ये काम हुआ। अगर आपके जीवन से बाबा निकल जाए तो आपका कौन सा पोजीशन रहेगा उस समय पता चलेगा। कई बार क्या होता है, इतना व्यक्ति खो जाते हैं जो कारोबार में, वो भी नशा चढ़ जाता, भोजन भी भूल जाते हैं। व्यापार करने वाले व्यक्ति के पास भोजन जाता है, डॉक्टर के पास पेशेंट अगर आ गया, अगर नाश्ता नहीं किया, भोजन नहीं किया तो भूल जाते, वो भी एक प्रकार की नशा है, व्यापार की नशा। इतना मस्त हो जाते व्यक्ति जो अपना भोजन पानी इतना तक क्या कि अपना तबीयत का भी ध्यान नहीं रखते हैं। समाज सेवा करने का भी नशा चढ़ जाते व्यक्ति, देश सेवा करने का भी नशा चढ़ जाते, जैसे हमारे अन्ना हजारे जी को देश सेवा की, स्पोर्ट्स का भी नशा होता है, खेलने का नशा, मेडिसिन का भी नशा होता है। कई बार जब व्यक्ति को नींद नहीं आती तो नींद की गोली देना पड़ता है ना डॉक्टर साहब, वो भी नशा होता है ना एक प्रकार की। चैन के नींद से सोने के लिए मेडिसिन लेते हैं, गोलियां लेते हैं, दवाई लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं व्यक्ति, मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स का भी नशा होता है, शराब का भी नशा, कबाब का नशा, चरस का, भांग का, गाजा का, हफिंग का नशा होता है, विकार का भी, आवेग तूफान, वो भी क्या है एक प्रकार की नशा है जो हमारे ज्ञान योग की नशा को बहा के ले जाता है। भक्ति का भी नशा होता है, भक्ति की नशा ऐसे चढ़ते कितना भी अच्छा आत्मा का परमात्मा का ज्ञान सुना दे उनको बुद्धि में नहीं बैठता है, ऊपर से चला जाता है, वह भी एक प्रकार की नशा है, शक्ति की नशा। तो ये सब हो गई कौन सी नशा की हम चर्चा कर रहे थे अभी, जिस्मानी नशा। आगे हम देखेंगे परमात्म दिल तख्त। परमात्म दिल तख्त कैसा है, विशाल है, बेहद है, और विशाल और बेहद होने के कारण से उस पर हम घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जॉकिंग कर सकते हैं, दौड़ी लगा सकते हैं, उस पे बैठ के हम भोजन भी कर सकते हैं, दूसरों को भोजन करा भी सकते हैं, और भोजन का आनंद भी ले सकते हैं और दूसरों का आनंद दिला सकते हैं, वो बताएंगे। वो इतना बड़ा है जो हम सो भी सकते उस नशे, उस तख्त पर, मौज मना सकते हैं, दूसरों को मौज मनवा सकते हैं, स्वयं सदा उस तख्त पर बैठ सकते हैं, दूसरों को भी बिठा सकते हैं। उस तख्त पर बैठकर श्रेष्ठ अनुभूति कर सकते हैं और श्रेष्ठ अनुभूति करा सकते हैं, श्रेष्ठ भाग्य की लॉटरी खोल सकते हैं और दूसरों को भी खुला सकते हैं, समय की बचत कर सकते हैं। अगर हम परमात्म दिल तख्त पर बैठेंगे तो व्यर्थ में फालतू का समय हमारा व्यर्थ नहीं होगा, समय की बचत होगी, समय का सदुपयोग होगा, परचिंतन से, दूसरों के चिंतन से, दूसरों को देखने पर दर्शन से, व्यर्थ से झुरमुई झुरमुई से हम मुक्त हो जाएंगे। हमारे जीवन में जो छुईमुई हो का जो नेचर है, वो छुईमुई के नेचर से हम दूर हो जाएंगे। हमारे कदमों में पदम की कमाई जमा होगी, सतमार्ग पर हम चलेंगे और सतमार्ग पर हम चला सकेंगे दूसरों को, समय पे अगर तख्त पर बैठे रहेंगे तो समय पर हर शक्ति कार्य करेगा, समय पर हम ज्ञान को यूज कर सकते हैं। तो ये थी परमात्म दिल तख्त। आगे है माया के दिल तख्त। माया के दिल तख्त अर्थात क्या, विकारों के वशीभूत होना अर्थात माया के दिल तक नशीन बनना, और विकारों का खजाना मिला है बाबा बताए थे मन में। माया का दिल तक नशीन बनना अर्थात माया को अपना जीवन साथी बना लेना। भगवान कहते बच्चे तुम मेरे को जीवन साथी बनाओ, हम क्या करते हैं भगवान को साइड करके माया को जीवन साथी बना लेते हैं। और माया भी बड़ा चतुर है, उनको भी अच्छा लगता है जीवन साथी बनाना, और जीवन साथी बना के परिस्थिति की काले बादल हमारे ऊपर मंडराने लगता है, वो परिस्थिति को हमारे आगे लाने लगता है और चारों तरफ से हमें घेर देता है परिस्थिति, जिसके कारण हमारे जीवन में निराशा तो पैदा होता ही है लेकिन उदासी और उबासी भी आता है। जीवन में उदास, निराशा के कारण उदासी आती है और उदासी के कारण उबासी आती है, क्योंकि प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती है। जीवन परचिंतन परदर्शन व्यर्थ से परिपूर्ण रहता है, भरपूर रहता है, छुई मुई रहता है, छोटी छोटी बात में खुद डिस्टर्ब होते दूसरों को भी डिस्टर्ब कर देते हैं, वातावरण को बिगाड़ के रखते हैं। जीवन में सफलता तो कोसों दूर, असफलता ही असफलता दिखाई देता है व्यक्ति को माया के तख्त नशीन बनने से। कोई भी गलती का कारण स्वयं को समझते या तो दूसरों को ही दोषी ठहराते रहते हैं, ज्ञान को समय पे व्यक्ति यूज नहीं कर पाते। जीवन में असुरक्षा, भय, अनिंद्रा के शिकार रहते व्यक्ति के जीवन में चिड़चिड़ापन आता है, असंतुष्ट रहते, दुखी रहते, निर्णय नहीं कर पाते व्यक्ति, क्या करना है क्या नहीं करना है, कब करना है कब नहीं करना है। अंत में माया क्या करती है, ब्राह्मण जीवन से फांसी के तख्ता पे खड़ा कर देता है, और लास्ट में अगर होश व्यक्ति को नहीं आता है तो लटका भी देते हैं। तो ये है माया की तख्त नशीन बनने की निशानी कहे चाहे फायदे कहे या नुकसान। अभी हम सुनेंगे परमात्म दिल तख्त नशीन आत्मा के निशानियां। तो अभी आप बताएंगे कि परमात्मा के दिल तख्त नशीन आत्माओं की निशानियां क्या होंगी, वो आज्ञाकारी होंगे, वो परमात्मा के आज्ञाकारी होंगे, वो सदा खुश रहेंगे, वो सदा प्रभु का गुण गाते रहेंगे दिल से मुंह से नहीं, रोम रोम पुलकित हो उठेगा उनका, रोम रोम परमात्मा के गुण गाता रहेगा, ये जीवन प्रभु उपहार समझेगा, वो उपहार, वो सदा परमात्मा पालना में पलते रहेंगे, बाबा से, पढ़ाई से, ब्राह्मण परिवार से, यज्ञ से, उनकी धारणाओं से जिगरी प्यार होगा। ऐसा नहीं कि बाबा से प्यार है, परिवार से नहीं, सेवा से नहीं, यज्ञ से नहीं, धारणाओं से नहीं, सबसे जिगरी प्यार होगा, मोह होगा उनका, रग रग का समाया होगा उस मोह में, श्रीमत सिर माथे पे होगा उनका, परमात्म श्रीमत सिर माथे पे होगा, हर आज्ञा का पालन दिल से करेंगे वो, हर समय वो परमात्मा को, पिता को, भगवान को यूज करेंगे। कौन? जो परमात्म दिल तक नशीन होंगे वो सदा उस साथ का अनुभव करेंगे, जब भी सेवा का चांस मिले वो डांस कर लेंगे, मौका मिलेगा तो चौका मार देगा, छोड़ेगा नहीं वो। परमात्म दिल तक नशीन आत्मा की परख कैसे हम परख सकते हैं कि ये परमात्म दिल तक नशीन आत्मा है, तो कैसे परख सकते हैं? वो सदा खुशी में रहेंगे, वो सदा संतुष्ट होंगे, असंतुष्टता उनके जीवन में नहीं होगा। उनके जीवन में रूहानियत होगी, रॉयल्टी होगा, रॉयल्टी की रियलिटी होंगी उनके अंदर। जीवन में दिव्यता से भरपूर होगा, परिपूर्ण होंगे, प्राप्ति से भरपूर होगा जीवन उनका, निर्भय निर्वैर होगा जीवन में, भय नहीं, त्रास नहीं, दुख नहीं, निर्भय उनका नेचर, मोल्डिंग नेचर होगा। जो परमात्म दिल तक नसीन आत्मा को परखने की मेथड है, जब जिनका नेचर मोल्डिंग नेचर है, समझ लीजिए परमात्म दिल तक नसीन आत्मा है, वो हर्षित मुख होंगे, उनका बोल में पावर होगा। जैसे हमारे कमलेश भाई, सुशील भाई, हमारे डॉक्टर साहब का है, प्रभावशाली होगा उनका बोल, जीवन उनका पारदर्शी होगा, चलता फिरता म्यूजियम होगा, जीवन प्रेरणा स्रोत होगा उनका, तब हम उनको कह सकेंगे ये परमात्म दिल तख्त नशीन आत्मा है। इस मुरली में, इस प्रश्न उत्तर में बाबा ने संगम युग को भी याद किया। संगम युग अर्थात क्या? सदा संग संग रहने का युग। इसी युग में हम परमात्मा के संग रह सकते हैं, सारे कल्प में और कभी नहीं हम रह सकते हैं परमात्मा के संग, माया के संग रह सकते हैं, संग संग खा सकते हैं, संग संग चल सकते हैं, संग संग सो सकते हैं, कदमों में पदम की कमाई जमा कर सकते हैं। इस युग में दूसरों के कदमों में पदम जमा करा सकते हैं, दूसरों को संग संग का अनुभूति करा सकते हैं, दूसरों को भी परमात्मा के संग सुला सकते हैं, दूसरों को भी चला सकते हैं, फिरा सकते हैं, मौज मना सकते हैं। इस युग में ये कर सकते हैं, दूसरे युग में हम नहीं कर सकते हैं। बेहद का भाग्य बनाने का युग है ये, बेहद का भाग्य बनवाने का युग है, ज्ञान गुण शक्ति से संपन्न करने का है ये युग, माया को विदाई देने का युग है और सत्य को आह्वान करने का युग है, स्वर्णिम दुनिया की गेट खोलने का युग है ये। इनका लिस्ट तो बहुत बड़ी बन सकती है, लेकिन अभी हम यही रोकते हैं। लास्ट में है बाबा ने श्रेष्ठ ब्राह्मण को भी याद किया है इस प्रश्न उत्तर में। श्रेष्ठ ब्राह्मण अर्थात क्या, अभी आप सब बताएंगे। डॉक्टर साहब, श्रेष्ठ ब्राह्मण जो बाबा के श्रीमत पर चलता हो और जिनका दिल सच्चा हो, साफ हो, जिनका संबंध केवल बाबा से हो, जो निश्चय बुद्धि हो, जिनके अंदर भाई भाई की दृष्टि हो, बहन भाई भी नहीं रहना है, भाई भाई की दृष्टि हो, माता जी ने पहले बोल दिया, जिनका हर संकल्प श्रेष्ठ, जिनका हर बोल श्रेष्ठ, जिनका हर कार्य श्रेष्ठ, जिनका हर कार्य कल्याणकारी हो, जिनकी भावनाएं बेहद का हो, जिनका जीवन मर्यादा से परिपूर्ण हो, समय को व्यर्थ न गवाए, सेकंड सेकंड को सफल करे और दूसरों को भी सफल कराए, उन्हें कहेंगे श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो ये थी आज की प्रश्न उत्तर सीरीज की 49 नंबर प्रश्न की। फिर से हम प्रश्न को पढ़ेंगे। स्थायी नशे में कौन रह सकते हैं? स्थायी नशे में रहने वालों की निशानी क्या है? उत्तर में है, स्थायी नशे में वही रह सकते हैं जो बाप दादा के दिल तक नशीन है। संगमयुग की श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान ही है बाप का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्यवाद स्टेट का तख्त तो मिलता रहेगा, कल्प में मिलेगा, द्वापर और कलयुग में मिलेगा, तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा तख्त फिर नहीं मिलेगा। यह इतना विशाल तख्त है जो चलो भी इस तख्त पे, अगर दूसरे तख्त पे अगर व्यक्ति बैठ के अगर चलेगा, एक तो गिरेगा, दूसरा कहेगा कि आउट हो गया, उनको ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। अगर उस पे आके सो जाए तो कहेगा कि बीमार जरूर हो गया है। और अगर मौज मनाया उस तख्त पे बैठ के, नेपाल में जब राजा सिंहासन पे बैठते थे और जो बोल देते थे उनका वो नियम बन जाता था, लागू हो जाता था। अगर उस पे बैठ के अगर मौज मनाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन बाबा के दिल तक नशीन ऐसा है जो उस पे खाओ पियो मौज करो घूमो फिरो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनके। ऐसे तख्त नशीन बच्चे हैं वह पुरानी देह और देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, देखते हुए भी उस दुनिया को नहीं देखते हैं। अच्छा हाँ हाँ, वो जो क्षणिक नशा जो पीते हैं व्यक्ति, तो हमने सुना था ना, एक बार कहानी में सुना था कि एक दारू इतना पीता था तो दुकानदार को पैसा दिया, थोड़ा ज्यादा पैसा दिया। दुकानदार के पास शराबी, दुकानदार के पास छुट्टे नहीं था तो बेचारा बोला कि कल आके ले लेना, चाहे दूसरे दिन ले लेना। दूसरे दिन आके दूसरी दुकान पे पी लिया शराब, पैसा छुट्टा लेने के लिए उनके दुकान पे गया। तो छुट्टा लेने के लिए गया तो देखा तो परचून का दुकान है, तो बोला कि तुम 20 रुपया के लिए तुम दुकान बदल दिया। तो बोला कि दुकान तो हमने नहीं बदला। नहीं, तुम झूठ बोल रहे। कैसे पता चला? कि एक भैंसा बैठा था उस दुकान के आगे, तुमने भैंसा बैठा है मना यही दुकान है समझा था, भैंसा वो परचून के दुकान के आगे बैठा था, उस दुकान पे बैठ गया। उनको समझ में आया कि ये भैंसा यहां बैठा है मना दुकान ये राइट है, इन्होंने 20 रुपया के लिए दुकान बदल दिया। वो नशे में भी व्यक्ति शुद्ध बुद्ध भूल सकता है, तो रूहानी नशे में क्या नहीं हो सकता है, हर कुछ संभव हो सकता है। तो हमें सदा रूहानी नशा में रहना है, स्थायी नशे में रहना है, और परमात्म दिल तख्त नशीन बन के रहना है। और हमारा फर्ज बनता है जो हमने परमात्मा से पाया है, जो तख्त नशीन पे बैठ के जो अनुभव खुशी की शांति की प्रेम की अनुभूति होती, जो हमें प्राप्ति हुआ है, वो हमें दूसरों को भी कराना है। अच्छा, ओम शांति।
जगदम्बा दुर्गा सरस्वती मम।